ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 31 32 और 33। अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो दो श्लोक जो हैं 31 और 32 वो मैं पढ़ता हूँ अनुवाद सहित, और 33वां श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइएगा। तस्मात् पितृणाम आर्तानाम आर्तिम परापराभवम तपसा अपनयम स्तात संदेशम कर्तुम अर्हसी। अनुवाद इस प्रकार है, हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। 32वां वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथा अंजसा विजेश्यामा सपत्नास्तव तेजसा। चूंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है सरलता से जीत सकें। इसका छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ देता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाएं। अतः यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। तो अब श्लोक हम लेने जा रहे हैं 33वां। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। न गर्हन्ति हि अर्थेषु यविष्ठा अग्नि अभिवादनम्। न गर्हन्ति हि अर्थेषु यविष्ठा अग्नि अभिवादनम् छंदोभ्योन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। छंदोभ्योन्यत्र ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणाम्। शब्दार्थ करते हैं ना नहीं, गरिहन्ति मना करते हैं, ही निसंदेह अर्थेषु स्वार्थ के लिए, यविष्ट अंगणी अपने से छोटे के चरण कमलों पर अभिवादनम नमस्कार, छंदोभ्यः वैदिक मंत्रों से अन्यत्र छोड़कर नहीं, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, वया आयु ज्येष्ठस्य गुरुता का कारणम कारण। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो, ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बड़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तात्पर्य कहा गया है, वृद्धत्वम वयसा विना, आयु में बड़ा ना होकर भी मनुष्य ज्येष्ठ हो सकता है, वृद्ध हो सकता है। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वह ज्येष्ठ हो सकता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे हिचकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, नीचाद्यपि उत्तमम ज्ञानम, मनुष्य समाज की नीची श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने से ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128 के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र केने नया, ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु हया। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं, आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तो यहां शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकं। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलम श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागर जातं सह गण रघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नमिताक्ष। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ पंचतत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्शक्तिकम नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुष नमाम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्म हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से आप सभी प्रिय भक्तों का माताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में आप आए हैं कक्षा में वृंदावन में। तो जो लोग प्रतिदिन भागवत श्रवण कर रहे हैं उनको मालूम है क्या प्रसंग चल रहा है। कथा का प्रसंग इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान। तो ये प्रसंग कई दिनों से चल रहा है और आप जानते हैं कि किस प्रकार जो देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में आते हैं और इंद्र जो है उनको देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते, उनका स्वागत नहीं करते और इस प्रकार बृहस्पति जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं उनसे और सभा को छोड़ करके चले जाते हैं। बाद में इंद्र को ग्लानि होती है, वो बृहस्पति जी को खोजते हैं, उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं लेकिन बृहस्पति जो हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। असुरों को इस बात का पता लगता है कि इस प्रकार से देवताओं की अपने गुरु से अनबन हो गई है और इस कारण से उनकी शक्ति जो है वो निश्चित रूप से क्षीण हो गई होगी और वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इस प्रकार से देवता बहुत ही एक दुविधा में आ जाते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, उनके अंग भंग कर दिए जाते हैं। असुरों के द्वारा देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है, अंततः वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको खरी खोटी सुनाते हैं तो तुम लोगों ने ये क्या किया, और अंततः उनको उपदेश देते हैं कि अब तुम विश्व रूप के पास जाओ और उनको अपना गुरु बनाओ। तो ये प्रसंग चल रहा। इस अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो जहां मान होता है वहां अपमान भी होता है। मान है तो अपमान है, जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, यश है तो अपयश है, लाभ है तो हानि है। तो ये जगत, ये पूर्ण ब्रह्मांड, केवल ये पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हो, जहां देवता हैं जहां सुर हैं वहां असुर हैं। तो कोई भी जगत जो है, पूरे जगत में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां ये द्वैत ना हो, ये जगत जो है द्वैतता से पूर्ण है। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब समझते हो, यही जो हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले ड्यूअलिटी कहां से शुरू होती है, ये द्वैतता यानी एक नहीं दो चीजें एक साथ जो हमें दुख देती हैं। जैसे शरीर के अंदर आत्मा, अमर आत्मा, अजर आत्मा, लेकिन शरीर कैसा, नाशवान, ये दोनों का मिलन ही दुख का कारण है। ये द्वैतता है, ड्यूअलिटी है। आत्मा अमर है लेकिन उसके साथ शरीर कैसा जुड़ा हुआ है, नाशवान शरीर जुड़ गया, दुख का कारण बन गया। इसी प्रकार से जगत में सब चीजें आप देख लीजिए, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, सब प्रकार से ड्यूअलिटी। मन में क्या चलता है, मन में यही संघर्ष चलता है, ये करूं या ना करूं, यहां जाऊं के ना जाऊं, ये खाऊं के ना खाऊं, अभी जागूं के अभी सो जाऊं, मंदिर जाऊं के ना जाऊं, ये क्या है, ये ड्यूअलिटी है। ये जगत पूर्ण संपूर्ण द्वैतता पूर्ण है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु का भी अपमान हो गया, उनका भी अपमान हो गया। स्वर्ग में भी मारधाड़ मच गई, वहां भी देवताओं के जो है अंग भंग हो गए, मानसिक तनाव वहां भी है। क्यों कि यह संपूर्ण जगत द्वैतता पूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा। प्रथम स्कंद में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पे, तब उत्तरा ने भगवान को पुकारा, उत्तरा ने पुकारा भगवान को, क्या कहा, पाही पाही महायोगिन देव देवा जगतपते, न अन्यम तो अद्भयम पश्ये यत मृत्यु परस्परम। हे देवादि देव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय प्रदान करने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहां सभी एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं, यह जगत द्वैतपूर्ण है। उत्तरा ने कहा यह जगत क्या है, यह द्वैतपूर्ण है। तो इस द्वैतपूर्ण जगत से बाहर निकलने के लिए हम लोग यहां सभी वृंदावन में हैं, और शिला प्रभुपाद के चरणों में हैं। किस लिए, क्या प्रयोजन है हमारा कि इस द्वैतपूर्ण जगत से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे को यह अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जगत द्वैतता से पूर्ण है। तो इसके लिए सारे प्रयोजन किए जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम साधना करते हैं, साधन भक्ति करते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है, एक ही लक्ष्य है कि हम इस द्वैतपूर्ण जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं, अद्वैत जगत में जाना चाहते हैं। एक जगत और है, कैसा, अद्वैत जगत, जहां कोई द्वैतता नहीं है, कोई द्वैतता नहीं है, वहां मान के साथ अपमान नहीं, वहां जन्म के साथ मृत्यु नहीं, वहां सुख के साथ दुख नहीं, वहां दिन के साथ रात नहीं, वहां लाभ के साथ हानि नहीं, वहां यश के साथ अपयश नहीं। अद्वैत, इसी बात को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में गाते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मुझे अद्वैत जगत में जाना है, मुझे अद्वैत भगवान जो अद्वैत हैं वहां अपने घर जाना है। तो ये जो जगत है ये द्वैतपूर्ण है, और यहां वहां जाने के लिए फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक आध्यात्मिक गुरु। देवताओं को भगवान ने गुरु दिए बृहस्पति के रूप में, असुरों को भी गुरु दिए शुक्राचार्य के रूप में, और हमारे को भी गुरु मिले शिला प्रभुपाद के रूप में। अब अंतर क्या है इसको समझेंगे। गुरु कौन है, गुरु का कर्तव्य क्या है, और गुरु किस प्रकार से हमारे को इस जगत से उस अद्वैत जगत में पहुंचा सकते हैं। सर्वप्रथम जब हमारा जन्म होता है तो हमारी गुरु सबसे पहले हमारी माता होती है। माता हमारी सर्वप्रथम हमारी गुरु बनती है, जो हमारे को इस संसार का बोध कराती है। धीरे धीरे हमें पिता का पता लगता है, पिता का ज्ञान होता है, तो माता पिता हमारे गुरु बनते हैं, और वही माता पिता अंत में हमें ये शिक्षा भी दे जाते हैं कि देखो अब हम ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं, अब इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये माता पिता कौन है? स्वाभाविक रूप से हमें शिक्षा दे गए कि संसार से तुम्हें भी जाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो माता पिता हमारे गुरु बने। माता पिता के गुरु बनने के बाद हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। वो जो हमारे भौतिक शिक्षा हमको देते हैं वो टीचर्स भी हमारे गुरु होते हैं। अनेक प्रकार के हम भौतिक शिक्षाएं ग्रहण करते हैं तो वो सब हमारे गुरु बनते हैं। उसके बाद चार प्रकार के गुरु जो हमारे जीवन में आने चाहिए। सबसे पहले एक हमारे हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं उनको कहते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, लेकिन अभी हम उनकी वाणी को सुन नहीं पाते। क्यों? कि हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जनम नहीं हो रहा। चेतो रूपी मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण जो है उसका मार्जनम नहीं है। तो चैत्य रूपी गुरु, और एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो जीवन में कभी एक बार आपको भगवान की तरफ लक्ष्य करके बता दें कि ये इस मंदिर है विष्णु भगवान का, राधा श्याम सुंदर का, और इसको अपना इष्ट बनाओ, यहां जाओ, आपको पथ दिखा दे, मार्ग दिखा दे, उसको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। और शिक्षा गुरु, अनेक प्रकार के शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जो हमारे को दीक्षा गुरु से मिला दे। और दीक्षा गुरु क्या करते हैं? हमारे को दीक्षित कर देते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है, हम द्विज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु हैं तो जिनके कारण से हम इस जगत से उस आध्यात्मिक जगत में, उस अद्वैत जगत में पहुंच जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद के जितने भी मंदिर हैं पूरे विश्व में, उनको समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये उस अद्वैत जगत में जाने का मार्ग है। जैसे एक देश से जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा बनवाने के लिए कहां जाना पड़ता है, कहां जाते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, दूतावास में जाते हैं। वहां से क्या मिलता है, वीजा प्राप्त होता है, और वीजा कभी मिलता है कभी रद्द कर दिया जाता है, नहीं भी मिलता। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रभुपाद के मंदिर हैं पूरे विश्व में, ये दूतावास है। यहां आप इसलिए आते हो अपना वीजा बनवाने के लिए, उस अद्वैत जगत में जाने का वीजा आपको चाहिए। और यहां के जो राजदूत हैं वो कौन है, शिला प्रभुपाद, जो कभी किसी का वीजा रद्द नहीं करते। इस बात को समझना है ना, सुबह से रात तक हम प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या लक्ष्य है, हमको अपना वीजा चाहिए। पासपोर्ट तो मिल गया आपको, जिस दिन मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ उस दिन आपको पासपोर्ट मिल गया, लेकिन पासपोर्ट पे साथ में क्या लगता है, वीजा लगता है, अगर आप उस जगत में जाना चाहते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया, और देवता और विशेष रूप से इंद्र जो है उनको खोजने लगा। किस लिए खोजने लगा, कि मेरे को मेरा खोया हुआ पूरा स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए, है ना। तो इसलिए बताया गया है कि जो देवताओं का जो लक्ष्य है वो उस जगत में जाने का नहीं है, तो गुरु किस लिए। अच्छा, असुरों के भी गुरु शुक्राचार्य हैं। अब असुरों का क्या है, ज्यादातर असुर भगवान के विरोधी हैं, वो विष्णु के विरोधी हैं, तो फिर किस लिए गुरु, क्या पर्पस, क्या उद्देश्य है गुरु का। गुरु का जो उद्देश्य है वो तो यही है कि भाई आपको जो है इस संसार से मुक्त करके उस जगत में पहुंचा दें जहां भगवान के शरणागत हम हो सकें, लेकिन कुछ असुरों को छोड़ करके जो 12 महाजन हैं, जिसमें विशेष रूप से 2 महाजन असुर होते हुए भी भगवान के भक्त हैं, बलि महाराज और प्रहलाद महाराज, असुर कुल में पैदा हुए। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु असुर कुल में पैदा होकर के भी भगवान की भक्त थी। इस प्रकार से कुछ एक भक्तों के नाम हम जान सकते हैं जो असुर कुल में पैदा होकर के भी वो भगवान के शरणागत थे, लेकिन विशेष रूप से ज्यादातर असुर जो होते हैं वो भगवान विष्णु की शरण में नहीं आते। वो किन की शरण में जाते हैं, वो जाते हैं शिव जी की शरण में, ब्रह्मा जी की शरण में, देवी की शरण में, शक्ति की शरण में, इनकी शरण में जाते हैं। और जो देवता हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और वो आपस में ईर्ष्या है, ईर्ष्यावाद है, और वो ईर्ष्यावाद आज भी चल रहा है। जो विष्णु के भक्त हैं वो और जो देवताओं के भक्त हैं उनका आपस में मेल नहीं बैठ पाता, तब से चला आ रहा है। तो यहां पर ब्रह्मा जी उनको ये कहते हैं कि आप जाओ और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आप जो है मनाओ जाकर के, और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो, ताकि आपको अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो जाए। तो वास्तव में क्या गुरु का ये कार्य है? क्या वास्तव में गुरु का ये कार्य है कि हमारी खोई हुई संपत्ति को वापस दिलाए, हमारे को ऐश्वर्य का भोग कराए? तो ये कैसे गुरु है, ये सोचने का प्रश्न है। क्योंकि भागवतम में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान् न पतेश्च सस्यान् मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। जो अपने आश्रितों को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो हमें यहां समझना होगा कि ये जो गुरु हैं, चाहे गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति पूर्ण ज्ञाता हैं, लेकिन उनके अधिकतर जो शिष्य हैं, देवता लोग हैं, वो केवल सकाम कर्मों के फल चाहते हैं। वो इस संसार, इस जगत से नहीं जाना चाहते। जब भगवान वामन देव प्रकट हुए इंद्र के पास, तो उन्होंने क्या मांगा? भगवान स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान आप मुझको मिल गए तो अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा भाव उनका नहीं था। ध्रुव महाराज ने यही कहा था कि अब आप मेरे पास आ गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? नारद, भक्ति के आचार्य नारद। तो जो यहां पर गुरु बृहस्पति हैं, वो गुरु भी हैं और पुरोहित भी हैं, इसको समझना होगा। पुरोहित का अर्थ होता है, जो पुर का मतलब होता है शरीर, पुर का मतलब होता है नगर, और पुर का मतलब होता है प्रथम। जो आपके नगर का हित चाहे, जो आपके परिवार का हित चाहे, जो आपके शरीर का हित चाहे, उसको कहते हैं पुरोहित। और जब कोई व्यक्ति पुरोहिती का कार्य करता है तो उसकी खुद की अर्जित उसकी शक्ति जो है उसका ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। इसलिए आप आगे पढ़ेंगे, विश्वरूप कहेंगे मुझे आप पुरोहित बना रहे हो, लेकिन पुरोहित बनने से मेरा खुद का, मेरी शक्ति में ह्रास होगा, मेरी शक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उसका कार्य होता है यजन, याजन, पठन पाठन, दान देना, दान स्वीकार करना। तो जब ये यज्ञ कराया जाएगा, किस लिए यज्ञ कराया जाएगा? हमारे सुख संपत्ति में कमी ना आए, हमारे ऐश्वर्य में कमी ना आए। जब इस प्रकार के यज्ञ कराए जाते हैं तो फिर यज्ञ कराने वाले की शक्ति का ह्रास होता, कमी आती है। तो इसलिए जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं वो कभी किसी से दान स्वीकार नहीं करते। आगे आप पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। जो अन्न के बाजार होते हैं, वहां जो अन्न गिर जाता है, उन अन्न को एकत्र करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही होता है कि हमें इस जगत में नहीं रहना। मुझे अब इस जगत में नहीं रहना, मुझे ये जगत अच्छा नहीं लगता। ये भावना जब हमारी प्रबल हो जाती है, फिर मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता। जैसे एक बच्चा जिद पकड़ लेता है माता पिता से, किसी खिलौने के लिए जिद पकड़ लेता है, मुझको ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो हमें भी ऐसी जिद पकड़नी है, मुझे उस जगत में जाना ही जाना, मुझको नहीं रहना। मैं नहीं रह सकता, एक ही लक्ष्य। तो यहां तो हम देखते हैं कि गुरु बृहस्पति इंद्र के दरबार में आए। अब इसको जरा विपरीत करके देखिए, इसको विपरीत करिए कि एक ब्राह्मण, एक बहुत बड़े विद्वान गुरु इंद्र की सभा में जाते हैं और वहां उनका इंद्र के द्वारा उनका अपमान हो जाता, गुरु का अपमान हो जाता है। अब एक इसको उल्टा करके देखिए, जो हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रसंग है कि जब विश्व के सम्राट, बहुत बड़े राजा जिनका ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से कम नहीं था, परीक्षित महाराज चले गए एक बहुत बड़े ऋषि मुनि के आश्रम में, शमिक ऋषि के आश्रम में चले गए और यहां उन्होंने उनका अपमान कर दिया। राजा ने, परीक्षित महाराज ने शमिक ऋषि का अपमान किया, वहां इंद्र ने अपमान किया बृहस्पति का, बृहस्पति उनके दरबार में आए, यहां राजा उनके आश्रम में जाते हैं और वहां जाकर के उनका अपमान कर देते हैं। प्यास के कारण जब वो तड़प रहे थे तो एक मृत जो है सर्प उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र को जब पता चला, श्रृंगी को, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि सातवें दिन एक तक्षक सर्प के द्वारा जो है राजा परीक्षित को डस लिया जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन अंतर क्या है, दोनों ने अपमान किया, परीक्षित महाराज ने भी अपमान किया और इंद्र ने भी अपमान किया। देखा जाए तो परीक्षित ने जो अपमान किया वो कहीं बड़ा था, इंद्र ने तो केवल देखा अनदेखा कर दिया, उनका सत्कार नहीं किया। लेकिन यहां परीक्षित ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने तो एक वृत्त है ना, सर्प उनके गले में डाल दिया। लेकिन अंतर कहां है, जब वो अपनी राजधानी में पहुंचे परीक्षित महाराज, तो वो पश्चाताप की आग में बुरी तरह जल रहे थे। वो अपने आप को इतना कोस रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, नहीं चाहिए मुझको ये ऐश्वर्य, नहीं चाहिए। इस कारण से एक बहुत बड़े महान तपस्वी का मैं अपमान किया है, किसी तरीके से मुझे इसका पश्चाताप करना है, मैं सारे राज्य को त्याग दूं, मैं इस कैसे भी करके मैं इस संसार को त्याग दूं, मतलब इतना पश्चाताप उनके मन में हो रहा था। और जब उनको ये बात का पता लगा कि उनके पुत्र के द्वारा श्राप दिया गया है, सातवें दिन आपको तक्षक सब के द्वारा डस लिया जाएगा, तब परीक्षित महाराज बड़े हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। चलो, वो उसमें भगवान की कृपा देख रहे थे, मैं अपने आप तो इस जंजाल से निकल नहीं सकता था, आज भगवान ने व्यवस्था कर दी मेरे को इस जंजाल से निकालने की, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन देवतागण उस राज्य को वापस लेने के लिए उतावले थे, चाहे उन्होंने अपमान कर दिया, उनके मन में वैराग्य नहीं जाग रहा था, परीक्षित के मन में वैराग्य ही वैराग्य था। तो वास्तविक गुरु हमारे को हमारे इस संसार के सुख वैभव ऐश्वर्य के प्रति वो हमारे को उस मार्ग पे नहीं ले जाते, या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि एक गुरु का अपमान हो गया है तो दूसरा गुरु अब स्वीकार कर लो। अगर किसी वैष्णव के प्रति निंदा हो जाती है, गुरु के प्रति निंदा हो जाती है, तो उसका ये कदापि अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि चलो अब दूसरा गुरु स्वीकार कर, नहीं। उन्हीं गुरु के चरणों में जाकर के जिनके प्रति अपराध हुआ है आपको क्षमा याचना करनी है। यहां पर तो वो गुरु चूंकि अंतर्ध्यान हो गए, मिल नहीं रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि चलो किसी तरीके से उनके समकक्ष अगर कोई आपको पुरोहित गुरु मिलते हैं तो उनको स्वीकार करो, कहीं ना कहीं आप अपना जो है उद्धार करो। लेकिन जहां तक हो सके जिनके प्रति अपराध हुआ है उनके प्रति हमें जो है वो क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो परीक्षित महाराज का जो भाव है वो बहुत उच्च कोटि का भाव है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे तब उस वक़्त जो है नित्यानंद प्रभु और दूसरे परिकरों ने उनसे आकर के निवेदन किया कि महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने क्या कहा, बोले क्यों मिलना चाहते हैं, मैं क्यों मिलूं उनसे, मेरा उनका क्या मतलब, वो ठहरे राजा, मैं ठहरा भिक्षुक सन्यासी, उनका मेरा क्या लेना देना। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद वो जाकर के मिले, जब वो साधारण वस्त्रों में बिल्कुल राजा का पूरा वेशभूषा निकाल के और राजा के उस भाव को निकाल करके जब उन्होंने महाप्रभु की शरण ली तब महाप्रभु ने उनका जो है आलिंगन किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु, भगवान ने दोनों को गुरु दिए हैं, लेकिन हम उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं ये हमारे को देखना है। जब जीव इस संसार में थक जाता है, भोग भोग के थक जाता है, तब उसको फिर उस जगत की याद आती है, अन्यथा भोगों में हम लिप्त रहते हैं, भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस श्लोक के अनुसार जो आखिरी जो बताया गया है इसमें कि देवताओं ने कहा कि आप छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से डरो मत। यहां बताया गया है कि गुरु जो है, अगर आध्यात्मिक गुरु वो आयु में छोटा भी है तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए, इसी बात पे बताया गया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी की आयु कितनी थी, 16 वर्ष की, और सारे देवतागण आकर के उनके पास बैठे, उनसे ज्ञान अर्जित किया। तो मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये जो है भारी चीजें हैं, कि विप्र किन्यासी शूद्र कहने आया नया, ये ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व आपको दे वो ही वास्तव में गुरु है और उसी की शरण लेनी चाहिए। ऐसे गुरु जो आपको ऐसे प्रलोभन दें कि आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, आपके जीवन में सुख संपत्ति आ जाएगी, तो वो गुरु नहीं है, वो क्या है, वो पुरोहित है। पुरोहित, इस अंतर को समझना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु जो आपको इस द्वैत जगत से भगवान के धाम पहुंचा दे उसको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो कार्य किया है श्रील प्रभुपाद, जो कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया, जो समस्त गुरु परंपरा ने किया। तो अभी यह प्रसंग आगे चलेगा, अभी मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, तई गौर प्रेमानंदे।